نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں اپنے دین کے علم کے لیے ایک بار پھر گھر سے باہر نکالا اور ہم وہ سنت پوری کرنے کے لیے نکلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی ازواج کی بھی تھی آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے اور اس کا نام ہے مصیبتوں سے کیسے نمٹا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی معاملے میں آزمایا جاتا ہے اور جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں چند باتیں جو علم کے آداب کے لیے ضروری ہیں اور جب آپ بیٹھ کے کسی جگہ سیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہی مقصد ہوتا ہے ایسی نشستوں کا کہ ہمیں علم لینے اور دینے کے آداب بھی آئیں تو گھر سے وقت سے پہلے نکلیں صبح اٹھ کے نفل پڑھ کے دو نکلیں کہ اللہ ہم علم کے راستے میں جا رہے ہیں اس کو قبول کرنا حدیث میں آتا ہے کہ جو طلب علم کی خاطر گھر سے نکلتا ہے تو جب تک واپس نہ آ جائے اگر اس کو موت بھی آ گئی تو وہ شہادت کی موت ہے تو آپ کا میرا اس وقت یہاں بیٹھنا بہت سیکیور ہے موت آتی ہے تو آ جائے پھر بس اللہ راضی ہو ہم سے کیونکہ علم کا راستہ ہے اور اللہ ہماری نیتوں کو اخلاص عطا کرے یہ کہیں کہ اللہ میرا یہ نکلنا میرا جنت کی طرف نکلنا بنا دے اور وقت سے پہلے یہاں آ کر بیٹھ کر اپنا کام شروع کر دیں اور انشاءاللہ یہ بک یہ موضوع جہاں بھی اب لوگ سنیں گے یہ فرانس والوں کا صدقہ جاریہ ہوگا تو میں یاد دہانی کے لیے بھی کہہ دوں گی کہ یہ کورس ہم لوگ آج 26 دسمبر 2016 میں شروع کر رہے ہیں اور ہم اس وقت فرانس میں فرانس کے شہر پیرس میں یہ مسجد فلاح دارین کیا نام ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فلاح دارین کا ہی سبب بنا دے ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو جو بھی لوگ جب بھی اس بک کو سنیں گے اور میرے گمان کے مطابق اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بعد میں سنیں گے اور زندگی رہے گی جب تک یہ صدقہ جاریہ رہے گا تو آپ سب اس کا حصہ ہیں پہلے تو دل کی گہرائی سے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں لوگ سوچتے ہیں جو بول رہا ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے حالانکہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ پڑھوا رہے ہوتے ہیں آپ کا ڈیڈیکیشن آپ کا فوکس آپ کے چہرے پہ علم کی طلب آپ کے چہرے کی عاجزی آپ کے فیس ایکسپریشن مجھے بولنے میں مددگار ہوں گے تو لہٰذا جتنا سینسٹیو کام میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے تو سیل فونز یہاں ہاتھ میں کھولنا کوئی ضرورت بھی نہیں فائدہ بھی نہیں بہتر ہے کہ فونز کو بند کر کے اندر رکھ دیں بیگ میں تو پورا ڈیڈیکیشن رکھیں جس محنت سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں یہ آسان نہیں ہوتا یہ ٹرپس فائنل کرنا یہ تو پتہ نہیں کس کس کا رات دن کا خون پسینہ نچڑتا ہے پھر یہ کچھ ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم سب کچھ کر کے اب یہاں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں تو اس وقت انشاءاللہ تعالی ہماری پوری ڈیڈیکیشن ہوگی تھوڑا سا بک کا انٹروڈکشن کروا دوں ویسے تو میں آپ کو اپنے پاس سے بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کوٹ کرواؤں گی جو بھی آپ کے نصیب میں ہوگا لیکن ہم اس بک کو فالو کریں گے اس کورس میں ایز اے ٹول ترتیب کے اعتبار سے بہت خوبصورت طریقے سے اس میں مصیبتوں سے متعلق چیزیں شروع میں انٹرو کے لیے یہ سب بول دوں تاکہ صرف یہ چند باتیں سن کر بھی ساتھیوں کا سننے کو شوق آئے اور ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ میں نے ایک ہی دن آنا ہے تو وہ ہر دن آنا چاہے اور ترتیب ہوگی تو یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے مصیبتوں سے کیسے نمٹیں بک اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں دار النور کی چھپی ہوئی ہے پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی इस पूरी बुक में इन चार सवालों का जवाब है, और यही चार सवाल मैंने हर दिन एक एक आपको जवाब दे के जाना है इंशाल्लाह ताला। पहली बात है कि ये राइटर आप सबके लिए नोन है, कुरान और सुन्नत, किसी मसलक, किसी सोच, किसी फिक, किसी दूसरे नाम के साथ ऐसी कोई बात इस किताब में नहीं होगी। टॉपिक भी बड़ा आम है, इसमें ना तो कोई फिक्ही इख्तलाफात हैं और ना कोई अकीदे की उलझने हैं। ये सादा सा एक सवाल है कि हम पे मुसीबतें आती क्यों हैं। हर दौर में लोगों ने इसका सवाल किया। अलामा इकबाल का तो मारूफ शेर भी आपको याद हो चुका होगा अब तक सुन सुन के, कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। तो इस किताब के अंदर वो सारे असबाब होंगे कि ये बेचारे मुसलमानों पे मुसीबतें क्यों टूटती हैं और मुझ बिचारी पे क्यों टूटती हैं। क्योंकि मुसीबतें जो होती हैं ना, ये दो तरह की होती हैं, एक इनफिरादी और एक इज्तमाई। एक हम पे वन बाय वन अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तकलीफ़ें आती हैं, मसलन आज किसी मेरे अजीज़ का इंतकाल हो गया तो कल आपके किसी का हो सकता है, आज मैं बीमार हूँ तो कल कोई और हो सकता है। और एक वो इज्तमाई मुसीबतें होती हैं जो हमें इस वक्त चारों तरफ दुनिया में मुसलमानों पर दिखती हैं। इंशाल्लाह इस किताब में हम चार मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये कि मुसीबतें क्यों आती हैं, और आज का हमारा टॉपिक ये और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। दो बहुत बड़े रीजंस होंगे, यानी फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जो मुसीबत आती है क्या वो कोई आजमाइश है या मेरे गुनाहों की सजा है। हम में से अक्सर लोग इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाते कि ये मुश्किल मुझ पे किसी सजा के तौर पे आई है, और तो क्या की है कि मुझ पे आ गई। और दूसरी सूरज यह है कि फिर नेक नेक लोगों पे क्यों आती हैं तकलीफें। तो इंशाल्लाह ये पहला मेन टॉपिक इसका ये होगा। फिर दूसरा इसका टॉपिक हमारा होगा कि मुसीबतों के आने से पहले क्या करें। देखिए इस्लाम का मिजाज है ना प्रिवेंटेशन का है। प्रिवेंटेशन समझते हैं, पहले से बचाव कर लो। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाती हूँ कि कोई एक ऐसी जगह है कि जहाँ पहाड़ी है और उसके साथ खाई भी है, जगह बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। तो एक मुल्क ऐसा है कि जिसकी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इधर एक हॉस्पिटल बना लेते हैं, एक एम्बुलेंस खड़ी कर देते हैं, साथ ही एक स्पेशलिस्ट को बुला लेते हैं जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। क्यों? ताकि जो ही कोई इधर पहाड़ी से उतरते हुए नीचे गिरे, खाई में गिरे, तो उसको एम्बुलेंस में डाला जाए, हॉस्पिटल में भेजा जाए और वहाँ वो स्पेशलिस्ट उसकी हड्डी को जोड़ दे। हम सब इसको बहुत अच्छा कहेंगे क्योंकि वेल प्लान, वक्त से पहले वहाँ हर चीज़ मौजूद है। कोई बीमार होता है फ़ौरन एम्बुलेंस आ जाती है, फ़ौरन उसको हाथों हाथ लेते और टेक केयर करते हैं। बज़ाहर देखने में ये स्टाइल हमें बड़ा खूबसूरत लगता है और वेस्ट में हमें इसकी झलक दिखती है कि हर चीज़ के लिए उन्होंने इंतजाम किए होते हैं कि जब ये होगा तो ये होगा, जब बच्चे माँ बाप से बेजार हो जाएंगे तो उनको ओल्ड होम्स में डालेंगे, और अगर बच्चे माँ बाप की आज़ादी में रुकावट है तो हम चाइल्ड केयर सेंटर बना लेते हैं। लेकिन एक दूसरी हुकूमत है वो कहती है कि सोचो हम यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करें, हॉस्पिटल बनाएं और हम इधर एक डॉक्टर को बनाकर बिठाएं, बहुत रिसोर्सेज चाहिए, क्यों ना हम इस घड़े को ही बंद कर दें। वो जगह जहाँ से किसी के गिरने का खतरा है, स्लिपरी है या कुछ भी है, हम इस फैक्टर को ख़त्म कर दें ताकि लोग गिरे ही ना। अब ना वहाँ आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत रहेगी, ना हॉस्पिटल की रहेगी, ना डॉक्टर्स की रहेगी। ये है तरीका प्रिवेंशन का, ये है इस्लाम का मिजाज कि घर टूटे ही ना कि क्राइसिस सेंटर में बेटियों को जाना पड़े। पहले ही वो मैयर लिए जाए, वो सारे असबाब इस्तेमाल किए जाए कि बेटियां घर बनाने वाली हों और मर्द घर बसाने वाले हों। बात समझ गए? तो यहाँ इसमें हम एक पूरा टॉपिक ये सीखेंगे जिसके अंदर फिर तकरीबन 18 पॉइंट्स है कि मुसीबतें आने से पहले क्या करें। ठीक है, फिर तीसरा इसका मेन टॉपिक हमारा होगा कि मुसीबत आ गई हमारी कोशिश के बावजूद, बचाव के बावजूद फिर भी आ जाती है। आप घर पूरा लॉक करके सोते हैं, चोर फिर भी आ जाता है। आप पूरी केयर करते हैं, फिर भी गर्मी सर्दी लग जाती है, फिर भी आप बीमार हो जाते हैं ना, ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब आए तो फिर क्या करें, ये काफ़ी तवील टॉपिक है। और उसके बाद ये है कि जब मुसीबत ख़त्म हो जाए, ये आखिरी चीज़ है जिसको बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि आई थी मुसीबत, अल्लाह के हुक्म से टल गई, अब उसके बाद क्या करें। बाज़ लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं, बड़े बड़े सदमों से बचते हैं, लेकिन चंद दिन के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि पहले थे। तो आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में हम बहुत कुछ देखेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करेंगे कि वो हम सबको बेहतरीन तरीके से इस मौजू से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। और इंशाल्लाह ताला जब हम इल्म की रोशनी में और इस किताब में आपको कुछ हदीसें और टॉपिक मिलेंगे, आप लोगों के पढ़ने का तरीका क्या कि आप मेरी बात सुने जैसे मैं बोल रही हूँ और आप इन छोटी छोटी बातों को नोट करें। जहाँ कोई हदीस या आयत आएगी वो आपके लिए इस बुक में लिखी हुई है। जिनके इस बुक है उनको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेफरेंस दे दें। बुक खोली होगी तो उस जगह को हाईलाइट कर लें। बस आप देखिए जैसे मेरे सामने भी किताब है तो अगर इसमें कोई चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है ना तो मैंने उसको हल्का सा हाईलाइट किया हुआ है। एक एक लफ्ज़ पढ़ने की जरूरत नहीं होती बल्कि इसके अंदर से वो चीज़ें जो आपके मेरे लिए फ़ायदे की होंगी। तो हकीकत यह है कि ये ज़िंदगी मुसीबतों से खाली नहीं है। एक मुश्किल से हम बचते हैं तो दूसरी मुश्किल में पढ़ना पड़ता है। तो आइए हम इस बुक के पेज 39 पे जो इंट्रो है उसमें से चंद चीज़ों को लेके शुरू करते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुसीबतों से कैसे निपटे, हम यहाँ इसके शुरू के इंट्रो को अगर देखें तो यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिलाशुबा ज़िंदगी मुसीबतों से खाली नहीं, एक मुसीबत से छुटकारा नहीं होता कि दूसरी आ पहुँचती है। अल्लाह ताला का इस दुनिया में यही दस्तूर है। वही इलाही से खबर देने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को सदियों पहले बहुत वाजे अंदाज में बयान किया था। अब हदीस है आपके सामने लिखी हुई, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है, उन्होंने फरमाया। अब इसके लिए ना आपको अपना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन आप सब अपने नोट्स में एक छोटा सा पेपर लेकर उस पर यह बनाएंगे तो इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेगी ये मिसाल। और ये नबी सल्लम की टीचिंग टेक्निक यानी आपके तालीम देने की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है कि आप फिगर्स और पिक्चर्स के साथ सिखाते थे। पिक्चर समझते हैं यानी माइंड मैप्स। आज के दौर में इसका बड़ा रिवाज है कि माइंड मैप क्या है, उधर से ये क्या है। तो अल्लाह के नबी ने क्या किया, आपने एक मुरब्बा शक्ल खींची। मुरब्बा किसको कहते हैं, रेक्टेंगुलर, यानी दो ऐसे लंबे और दो छोटे एजिस करके तो एक चौकटा सा बना दिया। और एक लकीर इस शक्ल से बाहर निकलती हुई खींची, यानी मिडल में एक नुक्ता लगाकर उधर से एक लकीर खींची और उसकी दीवार से वो बाहर गई। तस्वुर में आ रहा है, आप बना लीजिए साथ सुनते हुए, निशान बना के देखिएगा। इस दरमियानी लकीर की जानिब जाती हुई छोटी छोटी लकीरें लगाई, फिर फरमाया। अब आप देखिए कि जब कोई चीज आप जाहिर करके इस तरह बताते हैं तो उससे सुनने वाले का माइंड कितना क्लियर होता है। आपने फरमाया ये इंसान है, क्या ये जो मुरब्बा है। अब आप लिखें अपने पास जो रेक्टेंगुलर आपने बनाया उसके साइड पे डाउन एरो डालिए और लिखिए ये इंसान है, यानी ये इंसान की जिंदगी है जो इस चकोर दर्जे के अंदर है। ये इसकी मौत हर जानिब से इसका अहाता किए हुए है, यानी ये जो चार चौकटे की जो चार लाइनें हैं ना, ये आपका मेरा लाइफ स्पैन है। जिस दिन मेरी जिंदगी का खत इस लाइन से टच करेगा ये मेरी मौत होगी, ठीक है। यानी मुरब्बा शक्ल या करीब करीब इखाता कर चुकी है और ये लकीर जो इस मुरब्बा शक्ल से निकल रही है, एक खत ऐसा है कि वो लकीर को क्रॉस करके बाहर जा रहा है, ऐसे मिडल से करें। आपने फरमाया ये इंसान की उम्मीद है, यानी हम मर जाते हैं हमारी उम्मीदें नहीं मरती। सच है कि नहीं, वो कहते हैं ना कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो जब इंसान मर जाता है उसकी उम्मीदें जो हैं वो रहती हैं। फिर उस चौकटे के अंदर आपने यूं इस तरह छोटी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें लगाई, फरमाया ये छोटी छोटी लकीरें मुसीबतें हैं। अगर यानी एक मुसीबत इससे चूक जाती है, यानी हम एक से बचते हैं तो दूसरी आ पहुंचती है, और अगर ये इससे चूक जाती है तो ये तीसरी मुसीबत इसमें आ जाती है। क्या ये सच नहीं है। मैं इसको कैसे सोचती हूँ, जैसे अभी हम लोग सफर करके आए ना, आज तो आपको बहुत ही खाली सड़कें मिली होंगी, सिर्फ आप ही लोग निकले हैं, बाकी तो आज क्रिसमस की पार्टी मनाकर सो रहे होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आज सड़कों पे बिल्कुल रश नहीं था। लेकिन अगर कभी आप रोड पे गाड़ी चलाने के दौरान देखें, अभी एक गाड़ी से आप बचते हैं तो आगे दूसरी आ जाती है, फिर राउंड अबाउट है तो चारों तरफ से आती हैं। बस आप जिस तरह ड्राइविंग करते हुए चारों तरफ से बचते हुए आए हैं ना, यही जिंदगी का सफर है। अगर मैं और आप ये कहें कि हमें कोई तकलीफ आए ना, ये नहीं होगा। लिख लें, आपके बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, ये नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं जितनी मर्जी हों, वो काबे के खिलाफ को थाम कर भी अपने बच्चों के लिए दुआ करें ना कि अल्लाह मेरे बच्चे नू तत्ती हवा ना लगे। कहती है ना माएँ, वो तत्ती भी लगनी है, वो ठंडी भी लगनी है, कि अल्लाह मेरे बच्चे को गर्म हवा ना लगे, फिर भी लगेगी। दुआएं कबूल नहीं होती सारी, क्यों, अल्लाह ताला की सुन्नत है ये। कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी मुसीबत, कभी तंग दस्ती, कभी परेशानी, कभी एक हमारा दिल दुखा देता है, कभी हम किसी का दुखा देते हैं, और बाज दफा तो चारों तरफ से ताबक तोड़ हमले होते हैं। आम हालात में हम बड़े आराम से रहते हैं, हम कहते हैं सो के मौसम। अच्छा, मुसीबत आएगी ना, मिसाल है कि जैसे आजकल आप किसी की आवाज़ भारी देखें, सबसे पहला कमेंट हम क्या देंगे, मौसम बदल रहा है ना, वो सूखी हवा चल रही है ना, वो गीली हवा चल गई ना। अमूमन देखिए कि हम पे जो मुश्किल आती है ना, हम उसकी कोई लॉजिक दे देते हैं। वैसे बच्चा रो रहा है ना, तो वो इसकी नींद नहीं ना पूरी हुई, ये नहीं माँ सोचेगी कि ये बच्चा रो रहा है, ये मेरे किसी गुनाह की सजा हो सकती है, या अल्लाह मेरे दर्जे बुलंद कर रहा है कि मेरा बच्चा रोए और मैं उस पर सब्र करूँ। हमेशा लोग बहुत जल्दी जजमेंटल होते हुए, राय जनी करते हुए मुसीबतों को किसी सबब से जोड़ देते हैं। वो असल में रात नींद सही नहीं आई ना, तो आज सर में दर्द हो रहा है, नहीं ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई सबब अल्लाह ने नहीं बताया। तो जब कोई मुसीबतें आती हैं तो ये हमें जगाने के लिए आती हैं। देखिए, जब कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देता है ना, तो डॉक्टर्स उसको बिजली के झटके देते हैं। पहले दौर में आपने सुना होगा बिजली के झटके दिलवाने, इलेक्ट्रिक शॉक्स देने, आजकल उसको आप अल्ट्रा रेसिस कह सकते हैं, आप उसको कीमोथेरेपी करा सकते हैं। कैंसर के मरीज के एंड पे जो कीमोथेरेपी की जाती है वो क्या होता है, उसको बिजली दी जाती है। हम जब जरा से छोटे थे तो हमने सुना हुआ था कि जब कोई कैंसर से मुतासिर होता है तो उसको सांप का जहर देते हैं, यानी कीमोथेरेपी को उस दौर में लोग कहते थे कि ये पॉइजन होता है, तो मरीज के जिस्म में इंजेक्शंस के जरिए से दिया जाता है, जो जाके फिर कैंसर के सेल्स से उसको जलाता है या उससे डिस्ट्रॉय करता है। दुनिया में जब कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ता है, तब उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं ताकि वो काम करना शुरू कर दे, ऐसी है ना। या किसी का दिल काम करना छोड़े तो डॉक्टर्स उसको पंप करते हैं ना जोर से, या किसी का सांस उखड़े तो उसके लंग्स को प्रेस करके झटके दिए जाते हैं ना। ये जो झटके हैं ना, ये जिंदगी है, लिख लें, ये जिंदगी के झटके, जिसको मैं और आप कभी मुसीबत कहते हैं, कभी परेशानी कहते हैं, कभी दुख कहते हैं, ये हमारे सोए हुए जमीर को जगाने के लिए आते हैं। होश करो, वेकअप, उठ जाओ, अभी वक्त है, कुछ कर लो। किसी मुसीबत में हम पड़े और उससे निकल आए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। किसी बीमारी में हम पड़े, बड़ी खुशी की बात है, उससे निकलकर हम सबक सीख लें तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। एक जुमला लिखिएगा, बुक में नहीं है, मैं आपको अपने पास से कोट करवा रही हूँ, मुसीबत इंसान की उस्ताद बन जाती है, शर्त एक है कि आप उससे सबक सीखें। आप सबक सीखने वाले हो ना, तो हर बीमारी आपका उस्ताद है, हर परेशानी आपकी उस्ताद है, हर तकलीफ, हर फक्र, औलाद का झटका, शौहर की बेरुखी, बीवी की बेवफाई, बच्ची का ठुकराया जाना, बच्चे के घर का टूट जाना, ये सब हमारे लिए झटके होते हैं, ये उस्ताद बन के आते हैं कि लोगों सबक सीख लो, लोगों सबक सीख लो। ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें होती हैं। कोई ऐसा इंसान जिसको कभी उस्ताद ना मिला हो ना, कभी देखिए उसकी जहालत, वो अपने आप को खरफन बोला समझेगा, वो कहेगा जब मुझे आता है वो तो किसी को आता ही नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उसके पास ना कोई अदब होता है, ना कोई मैनर होता है। इसी तरह आप देखिए कि जिनके पास मुसीबतें बहुत होती हैं और वो उनसे सबक लेते हैं ना, तो वो एक ऐसा इंसान होता है जो 10 उस्तादों से पढ़ के आया, बात समझ गया, हर मुसीबत ने उसको हाथ लगाए और उसको पॉलिश कर दिया। और उस्ताद का भी यही काम होता है ना, कि वो हमारी तरबियत करता है। तालीम तो किताब भी दे देती है, तालीम तो रिकॉर्डिंग से भी मिल जाती है, लेकिन तरबियत उस्ताद के हाथ लगने से होती है। इसी तरह मुसीबतें हमारी तरबियत करती हैं, हमें अपनी बेबसी का एहसास होता है, हम सब कुछ कोशिश कर भी लें फिर भी अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, इसका एहसास होता है। फालुल लिमा युरीद, जो इरादा चाहता है वो करके रखता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब बहुत बीमार थे और बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे थे, तो किसी के कान में कुछ कहा, कहा क्या हुआ, किसी ने कहा चलें आपको तबीब के पास ले जाएं, कहते मैंने तबीब को दिखा दिया। अच्छा, डॉक्टर को दिखा दिया, क्या कहा उसने, कहा उसने कहा कि फालुल लिमा युरीद, कि मैं तो जो चाहता हूँ वो करता हूँ, तो अब मुझे जवाब मिल गया कि अब बस मेरे जाने का वक्त आ गया। तो याद रखिएगा कि जब भी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो उससे सबक लीजिए, यही आपका मेरा इम्तिहान होता है, फिर आप इंशाल्लाह उस मुश्किल से निकल जाएंगे। लेकिन लोगों का हाल अमूमन क्या होता है कि ना, वो कहते हैं ना कि वो एक मरहले बहादुर शाह जफर है कि इनका शेर भी है ना, कि जफर आदमी उसको ना जानिएगा जिसको दुख में खुदा ना याद रहे, जिसको सुख में खुदा की कोई बात ना, यानी दुख और सुख दो पर्चे हैं, लिख लें, खुशी और गम, मुसीबत और खुशी, या सेहत और बीमारी, ये इम्तिहान के दो पर्चे हैं। हर वक्त मेरी आपकी आजमाइश हो रही है, या हमें साबिर बनना है या हमें शाकिर बनना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज अबुल अम्र उल मोमिन, मोमिन का मामला बहुत अजीब है, खुशी मिलती है तो शुक्र करता है और शुक्र के रास्ते जन्नत में चला जाएगा, और गम मिलता है तो सब्र करता है तो सब्र का बदला जन्नत है। जैसे आप देखिए हम इस हॉल में बैठे हुए ना, एक ये डोर हमें दिख रहा है, एक इधर का दिख रहा है, कोई चाहे तो इस डोर से भी तो आ सकता है और कोई चाहे तो इससे भी आ सकता है अगर हम इसको खोल देंगे, ऐसे ही है ना। आप सोचिए कि ये खुशी का दरवाजा है, हमारी जिंदगी में खुशियां आती हैं, शुक्र आता है। जिंदगी रही तो किसी दिन आपको खुशियों से निबटना भी सिखाऊंगी, वो सबसे मुश्किल है। मुसीबतों से निबटना बहुत आसान है, लेकिन यकीन कीजिए कि खुशियों से निबटना ये तो हमारे कल्चर को तब कोई नहीं आता। हम तो खुशियों में अल्लाह से निबट रहे होते हैं, नाउज़ु बिल्लाह कि तूने खुशी दी क्यों, अब तुझे हम उछल कूद के दिखाते हैं, तुझे नाराज़ करके दिखाएंगे। और बाज़ लोगों का तो एटीट्यूड क्या हो गया कि नाफरमानी खुशी में नहीं करेंगे तो और कब करेंगे, शादी पे ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे, शादी पे ही भाई की शादी पे ये नहीं करना तो कब करना। वो दूसरे लफ्ज़ों में हम अल्लाह को कह रहे होते हैं कि खुशी में तेरी नाफरमानी ना करें तो फिर कैसे करेंगे। तो वो बड़ा मुश्किल पर्चा होता है, खुशियों में बहुत कम लोग अल्लाह के हुक्मों पे कायम रहते हैं, लेकिन मुसीबतों में नफ्स पे परे हुए पर्दे हट जाते हैं, नफ्स के ऊपर जो एक थोड़ी सी धुन छाई होती है वो छट जाती है। इसके बावजूद भी ना मुसीबत आने पे रवैया बदलता है और ना मुसीबत के होने पे बदलता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस सारे टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ये मुसीबतें जब आ जाएं तो क्या हो, क्योंकि मुसीबत के चले जाने के बाद का रवैया बहुत अहम होता है। ये भी याद रखें, ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इंशाल्लाह इस मौजू का, जिस वक्त भी हम इसको कर पाएंगे। लेकिन आप इन सारी चीज़ों से देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम सब के लिए ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। दीन इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं सिखाता। अगर सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही सिखाने के लिए अल्लाह के नबी आते, कोई ज़रूरत नहीं थी 23 साल की, इतने पत्थर खाने की और इतनी मुखालफतों को सहने की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ आते और एक छोटा सा बुकलेट देते। आज भी अगर आप पूरे कुरान में से नमाज की आयतें जमा करें ना, तो आपको पता है कि एक छोटा सा बुकलेट बनेगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यही चार चीज़ें और शहादतें। शहादतें इनको निकाल दें, ये बाकी जो चार रिचुअल इस्लाम के, पूरे कुरान में इसके ऊपर गिनती की बात है। ये इतनी बड़ी किताब, 6,000 से ज़ायद जो आयतें, ये आपको मुझे खुशी, गम, जीना, मरना, कारोबार, तिजारत, ये सब सिखाती है।